नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 6 जिलों में आज वनाग्नि को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ड्रिल की जानकारी दी। उत्तराखंड के 72 पुलिसकर्मी साइबर कमांडो परीक्षा में सफल, देश में मिला तीसरा स्थान। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में तत्काल प्रभाव से जिला प्रवासी कोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए। और 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रोमांचक मुकाबलों में खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 जिलों अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी के 16 स्थानों पर आज वनाग्नि को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों की तैयारियों को परखा गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों के साथ ही जन समुदायों की सहभागिता से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उधर चंपावत जिले के 2 स्थानों पर वनाग्नि का पूर्वाभ्यास किया गया। वनाग्नि मॉक ड्रिल की नोडल और लोहाघाट की उप जिलाधिकारी नितेश डांगर ने बताया कि वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए चंपावत तहसील के लमाई पुनेठी और पाटी तहसील के धूनाघाट में मॉक ड्रिल की गई।
चंपावत जनपद में 2 साइट्स पे आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, एक चंपावत तहसील के लमाई और पाटी तहसील के धूनाघाट में। सुबह 8:15 हमें सूचना मिलती है कि धूनाघाट के समीप जंगल में आग लग गई है और वहां 2 पशु जिनमें बकरियां हैं और 2 लोगों के आग को बुझाते हुए घायल होने की सूचना मिली। इसमें तुरंत IRS एक्टिवेट करते हुए सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया गया और सबको साइट के लिए मूव किया गया। वहां पहुंचकर हमारी SDRF की टीम ने दोनों लोग जो घायल थे उनको रेस्क्यू किया और उनको हमारी मेडिकल टीम ने मौके पे ही फर्स्ट एड दिया, लेकिन वो थोड़े सीरियस थे तो उनको तुरंत PSC पार्टी रेफर कर दिया गया।
उत्तराखंड के 72 पुलिसकर्मियों ने साइबर कमांडो परीक्षा को उत्तीर्ण कर राज्य को देश में तीसरा स्थान दिलाने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मियों ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 2रा, 6ठा और 10वां स्थान भी प्राप्त किया है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तराखंड से 242 पुलिसकर्मी शामिल हुए थे, जिनमें 72 का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि चयनित कर्मियों को देश के प्रतिष्ठित IIT संस्थान, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय आदि में गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 2024 में साइबर कमांडो प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसमें देश भर में 5000 साइबर कमांडो बनाने हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में फेज 2 इस परीक्षा का ये हुआ था चयन करने के लिए 11 फरवरी 2025 को, और इसमें हमारे टोटल 242 पुलिस कर्मियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें कि 72 का सिलेक्शन हो गया और ये 3rd है इंडिया में ओवरऑल स्टेट्स की रैंकिंग में, और 3rd ओवरऑल रैंकिंग है और ऑल इंडिया रैंकिंग में 2nd, 6th और 10th हैं। वो उत्तराखंड के हमारे उत्तराखंड पुलिस के एम्प्लॉयज हैं जिनका कि साइबर कमांडो में सिलेक्शन हुआ है।
आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये रेडियो की विशिष्ट उपयोगिता को याद करने का भी दिन है, जो दुनिया के हर हिस्से में लोगों तक पहुंचता है और उन्हें एकजुट करता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। इस अवसर पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है पूरे जन जागरण तक पहुंचने का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जन जन तक मनोरंजन, शिक्षा और सूचना उसका प्रसार करता है, प्रचार करता है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में तत्काल प्रभाव से जिला प्रवासी प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रवासियों द्वारा गोद लिए जाने वाले गांवों के विभिन्न मुद्दों, समस्याओं, भूमि संबंधित विषयों का तत्परता से निस्तारण करने को कहा है। मुख्य सचिव उत्तराखंड के प्रवासियों द्वारा राज्य के गांवों को गोद लेने के अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने जिलाधिकारियों को राज्य के विकास में विभिन्न कार्यों के माध्यम से सहयोग करने के इच्छुक प्रवासियों के सहयोग हेतु जिला प्रशासन और प्रवासियों की माह में एक बार अनिवार्य बैठक आयोजित करने को भी कहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के पूर्व दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रोमांचक मुकाबलों में खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं। इसी कड़ी में रुद्रपुर में शूटिंग के फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। वहीं राजधानी देहरादून में नेटबॉल, मिक्स, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक और जूडो की मुख्य स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। हरिद्वार जिले में कुश्ती और पुरुष व महिला वर्ग में हॉकी के फाइनल मुकाबले जारी हैं। टिहरी में कयाकिंग और कैनोइंग में खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं उधमसिंह नगर के खटीमा में पुरुष व महिला मलखंब की प्रतियोगिताएं खेली जा रही हैं। हल्द्वानी में फेंसिंग, मॉडर्न पेंथलॉन के रोमांचक मुकाबले जारी हैं। पिथौरागढ़ जिले में इन दिनों पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले के विभिन्न इलाकों से पीलिया के मरीज जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में इलाज को पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के मुख्य फिजिशियन डॉक्टर डीएस धर्मशक्तु ने बताया कि बीते 2-3 हफ्तों से पीलिया के मरीजों की तादाद में वृद्धि देखने को मिली है और अधिकतर 30 साल से कम उम्र वाले युवा और बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरीज की जांच के बाद उनका समुचित उपचार किया जा रहा है।
विगत 2-3 हफ्तों में जो जॉन्डिस के पेशेंटों की संख्या काफी बढ़ गई है और जो कि 30 साल से नीचे यंगर एज ग्रुप वाले ज्यादा पेशेंट्स हैं और इनके लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। बाकी कोई डेथ अभी तक इस जॉन्डिस से हुई नहीं है और इनके लिए जो बेसिक जो वायरल मार्कर्स हैं वो भेज दिए गए हैं कि किस वायरस के कारण ये इन्फेक्शन हुआ है।
वहीं जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेएस नबियाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीलिया से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए लोगों को जंक फूड और बाहर के खान पान से बचना चाहिए, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह है कि सबको जागरूकता रखें कि आप पानी स्वच्छ पिएं और खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें, शौच जाने के बाद हाथ धोएं, साफ सुथरा पका हुआ और उबला भोजन करें और आसपास साफ सफाई रखें। अगर खाने पीने में कोई संक्रमण हो, पानी में कोई संक्रमण हो, उसी का कारण होता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खेल के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से राज्य भर में खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है, खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर किया गया है, साथ ही प्रदेश के विभिन्न खेल परिसरों में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है जिससे आने वाले समय में राज्य के युवा खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा। श्री धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत मौली संवाद कार्यक्रम में ये बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रोन सर्विस तकनीशियन कोर्स ड्रोन दीदी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली युवतियों को पुरस्कार स्वरूप ड्रोन देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर राज्य भर में खिलाड़ियों में नया जोश है, इससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 6 जिलों में आज वनाग्नि को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ड्रिल की जानकारी ली। उत्तराखंड के 72 पुलिसकर्मी साइबर कमांडो परीक्षा में सफल, देश में मिला 3रा स्थान। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में तत्काल प्रभाव से जिला प्रवासी प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए। और 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रोमांचक मुकाबलों में खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।